समाचार में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि प्राथमिकता करारों की नहीं है उन्हें चिंता। विक्टोरिया में कोविड 19 टीकाकरण नियमों के उल्लंघन के लिए लगभग 420 पब्लिक स्कूल के शिक्षक निलंबित। और खेल में गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 के में सनराइज हैदराबाद को दी 5 विकेट से मात। अब समाचार विस्तार से। पॉलिन हैंसन ने के ऐसा इशारा करने के बाद कि वे वन नेशन में लिबरल के बनिस्पत लेबर को वरीयता दी जाएगी, प्रधानमंत्री ने उन कयासों को सिरे से खारिज किया है कि गठबंधन सांसद चुनाव के बाद नुकसान में रह सकते हैं। ये तब आता है जब सांसद हैंसन ने आरोप लगाया कि वन नेशन के पहले जैकी लैम्बी नेटवर्क को प्राथमिकता देने की वकालत करके सरकार ने शैतान के साथ करार किया है। दी ऑस्ट्रेलियन के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वे विक्टोरिया और क्वींसलैंड में खासकर ये देखेंगी कि लिबरल मार्जिनल सीटों पर नुकसान में रहें। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्राथमिकता करारों की उन्हें अधिक चिंता नहीं है।
There's further information to come in on that, particularly in relation to Queensland. There's different arrangements in different states and territories, and I know that there's a view about what's occurring in Tasmania. But you know what? That's just all politics. What matters is the choice Australians have to make.
उधर विक्टोरिया के कोविड 19 टीकाकरण नियमों के उल्लंघन के लिए लगभग 420 पब्लिक स्कूल के शिक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। 25 मार्च को बूस्टर की समय सीमा पूरी नहीं करने के कारण अधिकांश को बिना वेतन के छुट्टी पर रखा गया था। प्रीमियर डैनियल एंड्रूज का कहना है कि टीकाकरण जनादेश आवश्यक हो गया है और लोगों के प्राणों की सुरक्षा जारी है।
I'm not here to apologize to you or anybody else. Vaccines work. Vaccines save lives, and I'm very confident that people who've had one and two will get three very quickly, and I thank them for that. I'm just about sick and tired of this constant negativity when it comes to schools. Our schools were open on day one of term one. Our absentee rates in staff and students is lower today than it was before the pandemic.
ऑस्ट्रेलियन वर्कर्स यूनियन ने ऑस्ट्रेलियाई खेतों पर फल और सब्जी बीनने वालों के लिए नए न्यूनतम वेतन का स्वागत किया है। आज से हॉर्टिकल्चर अवार्ड्स में आने वाले बदलाव के हिसाब से जिन कैजुअल ऋषि श्रमिकों को उनके द्वारा चुने या पैक किए गए उपज के अनुसार भुगतान किया जाता था, उन्हें प्रति घंटे कम से कम $25.41 दर की गारंटी दी जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में ये अपील हुई थी। इसके बाद पिछले साल नवंबर में द फेयर वर्क कमीशन ने इस बदलाव की घोषणा की। ऑस्ट्रेलियन वर्कर्स यूनियन के राष्ट्रीय सचिव डैनियल वॉल्टन का कहना है कि नई मजदूरी संरचना फ्रूट पिकर्स को सुरक्षा प्रदान करेगी।
Today is a fantastic outcome for the hard-working fruit pickers right across our nation who, as a result of our case, will be guaranteed an hourly rate of pay for every hour they work. It's a great outcome. We'll hopefully go a long way to fix the exploitation and to make sure those workers get a fair day's pay for a fair day's work.
उधर फेडरल विपक्ष का मानना है कि लेबर की सरकार के तहत चाइल्ड केयर ज्यादा सस्ता और सुलभ हो जाएगा। लेबर सांसद अमांदा रिश्वत का कहना है कि चाइल्ड केयर को सस्ता बनाने से लोगों के रोजमर्रा के खर्चों में वास्तविक रूप से तुरंत राहत मिलेगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि इससे अधिक कुशल श्रमिक कार्यबल में लौट सकेंगे।
What Labor's child care policy does is deliver a double dividend. Of course, families are being smashed with the cost of living, with childcare out-of-pocket costs up 4.2% this year. So families are struggling with having to find more and more money to pay for the cost of childcare. Labor's childcare policy will reduce those cost pressures on families, saving an average family $1,600 a year.
गठबंधन ने घोषणा की है यदि उनकी सरकार वापस आती है तो वे केन्स मरीन मेंटेनेंस प्रीसिंक के चल रहे सुधार के लिए $24 मिलियन का भुगतान करेंगे। इस प्रोजेक्ट में कुल निवेश 48 मिलियन तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि इस निवेश से सैकड़ों नौकरियां पैदा होंगी, पर्यटन उद्योग का समर्थन होगा और ऑस्ट्रेलिया की सीमा सुरक्षा भी मजबूत होगी। उनका कहना है कि ये फार नॉर्थ क्वींसलैंड के लिए लाभदायक होगा।
real plans that turn into real facilities creating real jobs here in regional Australia. The Far North Queensland economy is far more diverse than I think people realise.
एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया भर में पिछले एक साल में एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदी विरोध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसराइल के टेल अवीव यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि यहूदी विरोधी हरकतों में तेज वृद्धि बड़े पैमाने पर कट्टरपंथी, वामपंथी और दक्षिणपंथी आंदोलनों से हुई है और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भी हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में 443 यहूदी विरोधी विवाद की घटनाएं दर्ज की और 2020 में शारीरिक हमले, उत्पीड़न और ग्राफिटी के मामलों में 35% की वृद्धि दर्ज की गई। ये रिपोर्ट यौम हाशुआ या होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे पर सामने आई है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मारे गए 6 मिलियन यहूदियों को याद करने के लिए ये वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। फेडरल विपक्ष नेता एंथनी अल्बनीसी कोविड-19 से ठीक होने के बाद एकांतवास से बाहर आने के लिए तैयार है। लेबर नेता पिछले गुरुवार यानी 21 अप्रैल को कोविड-19 परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए थे, जिस वजह से उनको चुनावी अभियान अपनी सिडनी के घर से करने पड़े। श्री अल्बनीसी रविवार 1 मई को पर्थ में अपने पक्ष के अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं और उन्हें आशा है कि तब तक वे अलगाव से बाहर निकलेंगे। उनके डॉक्टर ने उन्हें दैनिक कार्य समय को कम करने की सलाह दी है। एंग्लिकेयर ऑस्ट्रेलिया ने फेडरल चुनाव अभियान के दौरान सभी पार्टियों और उम्मीदवारों से किफायती आवास पर कार्यवाही करने का आह्वान किया है। यह तब सामने आया जब समिति ने अपना वार्षिक रेंटल अफोर्डेबिलिटी स्नैपशॉट जारी किया, जिसमें यह दोहराया गया कि ऑस्ट्रेलियाई निवासियों का किराए की कीमतों के साथ संघर्ष जारी है। इसमें देश भर में लगभग 46,000 किराए के घरों की सूची में यह पाया कि केवल 712 यानी 2% घरों का किराया न्यूनतम वेतन पर काम करने वाले लोग जुटा सकते हैं। एंग्लिकेयर ऑस्ट्रेलिया की कार्यकारी निदेशक केसी चेंबर्स का कहना है कि आने वाली सरकार को इस मसले पर जल्द से जल्द समाधान खोजने की जरूरत है।
We want to see the rates of government benefits raised. We want to see some more social housing developed right across the country. And we want to have an open conversation about the tax system so that we can reform it and make sure that Australians living in rental accommodation have a fair go.
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में बुधवार को कोविड के नए मामलों की संख्या बढ़कर 1,367 हो गई, जबकि पिछले दिन 1,204 मामले दर्ज किए गए थे। इसके साथ कोविड पॉजिटिविटी दर 4.97% हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 4,832 है। कल एक और मौत के साथ मरने वालों की कुल संख्या अब 26,170 है। देश भर में कोविड-19 मामलों में उछाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की और कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और हर पात्र बच्चे को जल्द से जल्द टीके लगाना एक प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, यह स्पष्ट है कि कोविड चुनौती अभी तक पार नहीं हुई है। अब मुद्रा दर की जानकारी में, इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज भी 71 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 54.45 रुपये हो गई है। खेल समाचार में, कल गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 के 40वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और सनराइजर हैदराबाद ने गुजरात के सामने 196 रन की चुनौती रखी। गुजरात टाइटंस ने जवाब में 199 रन बनाकर रोमांचक जीत दर्ज की। राशिद खान ने 11 गेंदों पर 31 और राहुल तेवतिया ने 21 गेंदों पर 40 रन की नाबाद पारी खेली, जिसकी बदौलत गुजरात ने बुधवार को 7वीं जीत दर्ज की। मार्को योनसेन के आखिरी ओवर में राशिद खान ने 3 और राहुल तेवतिया ने 1 छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। इसके साथ ही गुजरात टाइटंस की टीम 14 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में आंशिक बादल छाए रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम 21 डिग्री तक जाएगा। एडलेड हल्की बरसात की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम तापमान 22 तक रहेगा। मेलबर्न में भी बारिश की आशंका और यहां का न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम 25 डिग्री। कैनबरा में बादल छाए रहने के आसार, वहां का न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 22 डिग्री। सिडनी में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 27 डिग्री। ब्रिस्बेन में एक या दो बौछार की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 27 डिग्री। डार्विन बरसात के साथ आंधी तूफान की आशंका, वहां का न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 33 डिग्री तक जाएगा। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल फिर से आसमान में धुंध छाई रहेगी और सख्त गर्मी रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 44 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।